ऋतुस्राव चक्र, अन्य बोलचाल की भाषा में इसे मासिक धर्म और पीरियड के रूप में भी जाना जाता है। योनि के माध्यम से गर्भाशय की आंतरिक परत से रक्त और म्यूकोसल ऊतक का नियमित निर्वहन है। मासिक धर्म का रक्त आंशिक रूप से रक्त और आंशिक रूप से गर्भाशय के अंदर का ऊतक होता है। हर महीने एक महिला का शरीर गर्भावस्था के लिए तैयारी करता है। यदि गर्भावस्था नहीं होती है तो गर्भाशय अपनी आंतरिक परत को त्याग देता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्तस्राव होता है। ऋतुस्राव चक्र हार्मोन के बढ़ने और घटने की विशेषता है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। ऋतुस्राव चक्र की विशेषताएं। मादा प्राइमेट्स, उदाहरण बंदर, वानर और मनुष्य, में प्रजनन चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। ऋतुस्राव चक्र सामान्य प्रजनन चरण का एक संकेतक है और रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच होता है। पहला ऋतुस्राव यौवन के बाद शुरू होता है और इसे रजोदर्शन कहा जाता है। रजोदर्शन सामान्यतः 12 से 15 साल की उम्र के बीच शुरू होता है। महिलाओं में एक ऋतुस्राव चक्र के पहले दिन और अगले ऋतुस्राव चक्र के पहले दिन के बीच की सामान्य अवधि 21 से 31 दिन, औसत 28 दिन होती है। रक्तस्राव सामान्यतः लगभग 2 से 7 दिनों तक रहता है। प्रत्येक मासिक धर्म चक्र के मध्य में एक अंडाणु निकलता है। ऋतुस्राव चक्र प्रोजेस्टेरोन के स्तर में गिरावट के कारण शुरू होता है और यह एक संकेत है कि गर्भावस्था नहीं हुई है। ऋतुस्राव चक्र की समय अवधि में परिवर्तनशीलता 25 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में सबसे अधिक है और 25 से 39 वर्ष की आयु में सबसे कम, यानी सबसे नियमित है। 40 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए परिवर्तनशीलता थोड़ी बढ़ जाती है। महिलाओं में ऋतुस्राव चक्र 50 वर्ष की आयु के आसपास बंद हो जाता है। इस अवधि को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। ऋतुस्राव चक्र के चरण। ऋतुस्राव चक्र महिलाओं के प्रजनन जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। आइए ऋतुस्राव चक्र की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करें। ऋतुस्राव चक्र को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जाता है। ऋतुस्राव चरण, इसकी शुरुआत ऋतुस्राव चरण से होती है जब मासिक रक्तस्राव होता है और ये 3-7 दिनों तक रहता है। मासिक रक्तस्राव गर्भाशय के एक ऊतक अंतःगर्भाशय एंडोमेट्रियम के टूटने के परिणाम स्वरूप होता है और इसकी रक्तवाहिकाएं जो तरल बनाती हैं योनि से बाहर निकलती हैं। रक्तस्राव तभी होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है। मासिक रक्तस्राव का ना होना गर्भावस्था का संकेत हो सकता है। हालांकि ये कुछ अन्य अंतर्निहित कारणों जैसे तनाव, खराब स्वास्थ्य आदि के कारण भी होता है। कूपिक चरण प्रोलिफेरेटिव चरण। ऋतुस्राव चरण के बाद कूपिक चरण आता है। कूपिक चरण में डिम्बग्रंथि के कूप की परिपक्वता शामिल होती है ताकि उनमें से एक को डिम्बोत्सर्जन के लिए तैयार किया जा सके। इसी अवधि के दौरान अंतःगर्भाशय में समवर्ती परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि कूपिक चरण को प्रोलिफेरेटिव चरण के रूप में भी जाना जाता है। इस चरण में अंडाशय में प्राथमिक कूप पूरी तरह से परिपक्व ग्राफियन कूप में विकसित हो जाते हैं। आई साथ ही अंतःगर्भाशय का पुनरुत्पादन होता है। आई अंडाशय और गर्भाशय में ये बदलाव पिट्यूटरी और डिम्बग्रंथि हार्मोन के स्तर में परिवर्तन से प्रेरित होते हैं। आई गोनाडोट्रोपिन LH और FSH का स्राव कूपिक चरण के दौरान धीरे धीरे बढ़ता है और कूपिक विकास के साथ साथ स्राव को उत्तेजित करता है। आई बढ़ते कूप द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। अंडाशय चरण डिम्बोत्सर्जन। ऋतुस्राव चक्र के मध्य में LH और FSH दोनों ही चरम स्तर पर पहुंच जाते हैं, लगभग 14वें दिन। LH का मध्य चक्र के दौरान तेजी से स्राव होता है और इसका अधिकतम स्तर पहुंच जाता है, जिसे LH उछाल आवेश कहा जाता है। आई इसके परिणामस्वरूप ये ग्रेफियन कूप के विच्छेदन में सहयोग करता है और इस प्रकार अंडाणु निकलता है। आई स्रावी चरण यूटियल चरण। अंडाशय चरण के बाद स्रावी चरण आता है, जिसके दौरान ग्रेफियन फॉलिकल के शेष भाग कॉपस यूटियम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आई कॉपस यूटियम बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो अंतःगर्भाशय के रखरखाव, निषेचित अंडाणु के आरोपण के लिए और गर्भावस्था की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान की सभी घटनाएं ऋतुस्राव चक्र बंद हो जाता है और रक्तस्राव नहीं होता है। निषेचन के अभाव में कॉपस यूटियम नष्ट हो जाता है। इससे अंतःगर्भाशय का विघटन होता है और रक्तस्राव का होना एक नए ऋतुस्राव चक्र को चिन्हित करना। ऋतुस्राव स्वच्छता उत्पाद। ऋतुस्राव उत्पाद, जिन्हें स्त्री स्वच्छता उत्पाद भी कहा जाता है, ऋतुस्राव के रक्त को अवशोषित करने के लिए बनाए जाते हैं। कई अलग अलग उत्पाद उपलब्ध हैं, कुछ निस्तारित कर दिए जाते हैं, कुछ पुनः प्रयोज्य हैं। ऋतुस्राव के रक्त को अवशोषित करने या रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं सामान्यतः व्यावसायिक रूप से निर्मित उत्पाद होती हैं। महिलाएं मुख्य रूप से ऋतुस्राव के रक्त को पकड़ने के लिए टैम्पोन, टैम्पॉन्स, नैपकिन, पैड्स या ऋतुस्राव कप, मेंस्ट्रुअल कप जैसे उत्पादों को पहनकर ऋतुस्राव का प्रबंधन करती हैं। ऋतुस्राव स्वच्छता उत्पाद के प्रकार। मुख्य निस्तारित कर दिए जाने वाले उत्पाद सैनिटरी नैपकिन, जिसे सैनिटरी पैड भी कहा जाता है, ऋतुस्राव के रक्त प्रवाह को अवशोषित करने के लिए इन्हें लकड़ी की लुगदी या जेल के उत्पाद से बनाया जाता है। आईपैड को अधोवस्त्र पर जगह पर रखने के लिए एक चिपकने वाला चिपचिपा पदार्थ लगा दिया जाता है। आई सामान्यतः इनमें प्लास्टिक की परत लगाई जाती है और ब्लीच किया जाता है। टैम्पोन उपचारित रेयान, कॉटन मिश्रण या ऑल कॉटन ऊन निर्मित बेलनाकार उत्पाद को टैम्पोन कहा जाता है, सामान्यतः ब्लीच किए हुए, जिन्हें ऋतुस्राव के रक्त प्रवाह को अवशोषित करने के लिए योनि में डाला जाता है। मुख्य पुनः प्रयोज्य उत्पाद ऋतुस्राव कप, ऋतुस्राव के रक्त प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए योनि के अंदर पहना जाने वाला एक मजबूत लचीला कप के आकार का उत्पाद है। ये मेडिकल ग्रेडेड सिलिकॉन से बने हैं। ये महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प हैं, क्योंकि यह पैड की तरह त्वचा पर चकत्ते पैदा नहीं करता है और टैम्पोन और पैड की तरह ब्लीच नहीं होता है। इसमें लगे तने का उपयोग सम्मिलन और निष्कासन के लिए किया जाता है और घंटी के आकार का कप गर्भाशय ग्रीवा के ठीक नीचे योनि की दीवार को सील कर देता है और मासिक धर्म द्रव एकत्र करता है। ये टैम्पोन और मासिक धर्म पैड के विपरीत है, जो तरल पदार्थ को अवशोषित करते हैं। पुनः प्रयोज्य कपड़े के पैड, पैड जो कपास अक्सर जैविक टैरी क्लॉथ या फलालन से बने होते हैं और हाथ से सिले जाते हैं, आए पुनः उपयोग किए गए पुराने कपड़े और तौलिए से या स्टोर से खरीदे कपड़ों से भी बन जाते हैं। पीरियड प्रूफ अंडरवियर प्रवाह को अवशोषित करने के लिए अतिरिक्त शोषक परतों के साथ पुनः प्रयोज्य कपड़े से सामान्यतः सूती कपड़े बनाई गई अंडरवियर। पीरियड पॉवर्टी गरीबी के कारण कुछ महिलाएं व्यावसायिक स्त्री स्वच्छता उत्पाद नहीं खरीद सकती। इसकी जगह वे पर्यावरण में पाई जाने वाली सामग्रियों या अन्य तात्कालिक सामग्रियों का उपयोग करते हैं। पीरियड पॉवर्टी एक वैश्विक समस्या है जो उन महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती है जिनके पास सुरक्षित स्वच्छ स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा विकासशील देशों में ठोस अपशिष्ट निपटान प्रणालियों की अक्सर कमी होती है, जिसका अर्थ है कि महिलाओं के पास पैड जैसे इस्तेमाल किए गए उत्पादों के निपटान के लिए कोई उचित जगह नहीं है। उपयोग की गई सामग्रियों का अनुचित निपटान भी स्वच्छता प्रणालियों पर दबाव बनाता है, क्योंकि ऋतुस्राव स्वच्छता उत्पाद शौचालयों, पाइपों और सीवरों में रुकावट पैदा कर सकते हैं।